आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लोकसभा में वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। संसद में बजट भाषण संपन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रति मैसेंजर ऐप पर लीक होने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है। इकाई ने कहा कि प्रसारित हो रही एक तस्वीर पिछले बजट की है जो डिजिटल रूप से संपादित करके 2026-27 की बताई गई है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश में रामसर के फैलाव में दो नए नम भूमि क्षेत्रों को शामिल करने की घोषणा की है। ये दोनों इलाके उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात में कच्छ जिले के छारी ठाण में स्थित हैं। श्री यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रामसर फैलाव का नेटवर्क 2014 में 26 स्थलों से बढ़कर वर्तमान में 98 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों जगहों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एटा जिले के पटना पक्षी अभयारण्य को नम भूमि क्षेत्र में शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को बधाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को वैश्विक पहचान मिल रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज समस्त बूथों पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इन बूथों पर BLO सभी जरूरी प्रपत्रों के साथ मौजूद रहे। एक रिपोर्ट।
SIR के तहत त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने का कार्य लगातार जारी है। इसी क्रम में 6 जनवरी को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रदर्शन आज प्रदेश के सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाकर किया गया। इस अवसर पर BLO ने लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया, साथ ही कहा कि जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है वे घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 भरकर उपलब्ध करा दें। समाचार कक्ष से रितेश।
मऊ में जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने कई बूथों का निरीक्षण कर मतदाताओं से बातचीत की और BLO को निर्देशित किया कि किसी भी पात्र नए मतदाता का नाम छूटने न पाए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आजमगढ़ और जौनपुर जिले के लिए दो महत्वपूर्ण 4-लेन सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आजमगढ़ में 15 किलोमीटर लंबाई वाले 4-लेन दक्षिण पूर्व बाईपास के निर्माण के लिए 1,279.13 करोड़ रुपए लागत की स्वीकृति दी गई है, जबकि जौनपुर में 12.2 किलोमीटर लंबाई वाले 4-लेन वेस्टर्न बाईपास के निर्माण के लिए 944.19 करोड़ रुपए की लागत मंजूर की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का विस्तृत वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत 4 दिवसीय PCS 2025 की मुख्य परीक्षा 29 मार्च से शुरू होगी। PCS 2026 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 6 दिसंबर को प्रस्तावित की गई है। देश भर में किसानों को 25 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। वर्ष 2015 में सरकार ने भूमि में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की थी। पिछले वर्ष जुलाई तक इस योजना के अंतर्गत 93,000 से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। खेतों के 6 लाख से अधिक अवलोकन कार्यक्रम आयोजित हुए और हजारों जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए गए। एक रिपोर्ट।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर 2 वर्ष के अंतराल पर वितरित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से भूमि की भौतिक रसायन जानकारी और पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में सूचना का प्रसार किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को फसल आधारित खेती करने और सही मात्रा में उर्वरक तथा रासायनिक तत्वों के इस्तेमाल की जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें जैविक उर्वरक और खाद के सही उपयोग के तरीके भी शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
गोरखपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में लगातार दूसरे दिन सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया है। कल कुछ जिलों में शीत दिवस भी हो सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।